Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन यदि आप हार भी जाते हैं तो भी आप समझदार बनेंगे। हर हार जिंदगी में आपको समझदारी की ओर ले जाता है, तो हमें हार से हार मानने की जरूरत नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि हार में ही जीत छुपी है। तो अपने आप को कभी भी हताश मत होने दीजिएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में अलग अलग पहलुओं को जाना डिप्रेशन के। अब मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से काउंसलिंग हेल्प करता है हमें डिप्रेशन से बाहर आने में।
वंडरफुल, आपने जो ये एपिसोड की शुरुआत की
जी,
वही एक बहुत ही अच्छा काउंसलिंग है।
ओके।
कि हर निराशा में, या तो कहेंगे हर हार में, है ना, जीत छिपी हुई है
जी।
अगर ये व्यक्ति समझ ले अच्छे से कि जब जब भी मैं हारता हूँ, कोई समस्या आती है, तो उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
बिल्कुल।
और वो जो बात सीखने को मिलती है वो बहुत बड़ी है।
करेक्ट।
शायद करोड़ों रुपया देके भी वो हम सीख नहीं पाते हैं।
करेक्ट।
कि जो उस घटना से मुझे सीखने को मिला, नहीं, अगर वो कोई समझ ले तो वो कभी भी निराश नहीं होगा।
करेक्ट।
है ना, डिप्रेशन क्या है कि जो खुशी है, जो उमंग उत्साह है, जो अच्छा लगना है, वो मेरा समाप्त हो गया। और क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि ऐसी कोई बात अंदर में हो गई कि सब घटित हुआ वो अच्छा नहीं होना चाहिए।
करेक्ट।
है ना, या मेरे साथ नहीं होना चाहिए, है ना?
करेक्ट।
या तो मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, या तो किसी ने मेरे साथ ये जो किया वो गलत किया।
Correct.
ऐसी कोई भी बात, परंतु यह भी बहुत बड़ा काउंसलिंग हो सकता है कि भल यह घटित हुआ, परंतु उसमें भी मुझे कुछ बहुत अच्छी बात सीखने को मिली।
Correct.
ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति एक बार एक कहे कि खुला मन बना ले, और आसपास में जो चीजें घटित होती है उससे सीखने लगे, तो वो कभी भी निराश नहीं होगा। बस उसको पहले से ही वह एक मनोभूमिका को तैयार करना है।
जी।
और यह सब क्यों होता है? जो हम डिप्रेस्ड होते हैं, वो हम क्यों डिप्रेस्ड होते हैं? क्योंकि लाइफ में घटनाएं होती है, है ना, समस्याएं आती है, उस समस्याओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं। उससे होता है। और इससे भी पहले हम देखें तो है कि व्यक्ति अपने आप को ही स्वीकार नहीं करता है।
करेक्ट।
तो ऐसे हम देखें तो साइकोथेरेपी की शुरुआत ही यहां से होती है कि पहले अपने आप को स्वीकार करो। मैंने अनुभव किया है कि जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं स्वीकार करता है, तब तक कोई साइकोथेरेपी काम नहीं करती है।
ओ।
ना? तो यह एक फाउंडेशन होना चाहिए
जी।
और भला बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य यह होता है कि व्यक्ति में कोई ना कोई रीति से स्वमान को भर दे
जी,
कि भी तुम अच्छे हो।
करेक्ट।
ना? यह स्वमान अगर आ जाए तो फिर और चीजें ऑटोमेटिक काम करती है। और आज डिप्रेशन इतना बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि हमारा स्वमान गड़बड़ा गया है।
ओके।
ना, फिर ये प्रश्न आता है कि स्वमान गड़बड़ा क्यों गया?
करेक्ट।
ना, तो स्वमान इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि हमने स्वमान का आधार बाह्य चीजों पर डाल दिया है।
करेक्ट।
वास्तव में कहने में ही आता है कि स्वमान,
स्व,
हाँ, स्व का मान है। कोई कपड़े का मान नहीं बोला
जी,
है ना, घर का मान नहीं बोला
जी,
कार का मान नहीं बोला, प्रतिष्ठा का मान नहीं बोला, परंतु हम महत्व तो उन सब चीजों को देते हैं।
करेक्ट।
बस इतना भी हम समझ ले कि स्व का मान, और थोड़ा सा ये सोचे कि भी स्व क्या है, और उस पर चिंतन करने लगो तो भी ये सारी बातें समाप्त हो जाएगी।
करेक्ट। भाई जी, क्या स्वमान और ईगो फिर सेम नहीं है? इसके इन दोनों के बीच में अंतर है या दोनों एक ही हैं?
नहीं नहीं, डेफिनेटली डिफरेंट है।
अच्छा।
कि जब ईगो है तो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते हैं।
ओके।
और ईगो है वो उल्टा बाह्य चीजों पर डिपेंडेंट है।
अच्छा।
कि ईगो है वह मेरे कपड़ों पर डिपेंडेंट है, ईगो है मेरे घर के इंटीरियर पर डिपेंडेंट है, ईगो है मेरी कार की साइज पर डिपेंडेंट है, लेकिन स्वमान वो ऐसी कोई भी बाह्य चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वह स्वमान है। एक्चुअली स्वमान इंटरनल है और ईगो एक्सटर्नल है।
ओके।
और एक्सटर्नल चीजें है उसमें अप्स एंड डाउन होना ही होना है, परंतु इंटरनल है वो स्टेबल रह सकता है।
Correct.
आज इंटरनल भी अप्स एंड डाउन हो रहा है, तभी डिप्रेशन आ रहा है।
Correct.
तभी मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, परंतु इंटरनल क्यों अप्स एंड डाउन हो रहा है? क्योंकि इंटरनल को हमने एक्सटर्नल पर डिपेंडेंट बना दिया। ना भी छोटा सा हम समझ ले कि इंटरनल स्टेज एक्सटर्नल पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है
जी,
तो इंटरनल ऑलवेज स्टेबल रहेगी।
वेरी नाइस, दिस इज सच अ गुड थॉट। ये सोच करके ही मुझे कितना पीस फील हो रहा है, क्योंकि हम 2400 घंटे कुछ ना कुछ बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम दोनों को डिस्कनेक्ट कर दें, अपने अंदर के जो सेल्फ है और बाहर की जो ये बातें हैं, तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा डिप्रेशन तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिससे हमें पता चले कि किस तरह से हम अपने स्वमान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें?
जिग ज़िग्लर बहुत ही अच्छे ट्रेनर है
जी,
कि जिनको ट्रेनिंग देने के लिए लाखों रुपये दिए जाते हैं, और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक सेल्समैन के रूप में की।
अच्छा।
और काफी समय तक वो अच्छे सेल्समैन नहीं थे ना, वो मानते थे कि मैं कभी भी शायद जीवन में अच्छा सेल्समैन नहीं बनूंगा
जी।
उनकी बहुत अच्छी किताब है सी योर सेल्फ ऑन द टॉप, उसमें वो लिखते हैं कि मैं अच्छा सेल्समैन कैसे बन गया
जी।
तो वो कहते हैं कि भी एक मीटिंग में मेरी ही कंपनी के एक सीनियर व्यक्ति ने मुझे नजदीक बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा, यंग ज़िग्लर, तुम्हारी पर्सनालिटी वंडरफुल है ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ग्रेट है ना, तुम्हारे हाव भाव बहुत अच्छे है, है ना, तुम्हारा बोलने का तरीका ग्रेट है, बहुत अच्छा है ना? ऐसे भल मैं बदल रहा हूं, क्या बोला होगा पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ऐसे कुछ अच्छी बातें बोली
जी।
कि भी तुम्हारे पास वह कैपेसिटी है कि तुम हमारे देश के सबसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हो
जी।
है ना, ऐसी कुछ बातें बोली। ज़िग ज़िग्लर लिखते हैं कि थोड़े ही दिनों में मैं बहुत अच्छा सेल्समैन बन गया, मैं अपनी चीजें अच्छे से बेचने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे में कोई बदलाव नहीं आया था, मैंने कहीं जाके कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, है ना, मैंने और कुछ प्रैक्टिस नहीं की, बस बदलाव इतना ही आया था कि जब वो सीनियर व्यक्ति ने अच्छी बातें मुझे बोली तो मैं शायद नोइंगली एंड अननोइंगली, जाने अनजाने कई बार मैंने सोचा होगा कि जब इतना अनुभवी व्यक्ति कहता है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स है, तो सचमुच मैं अच्छा सेल्समैन हूं, तो जो मैंने अपना काम किया, अब तक जब मैं लोगों के पास जाता तो डर डर के जाता था कि शायद तो ना बोल देगा, वो मेरी चीज नहीं खरीदेगा। लेकिन अब जो मैं गया तो अंदर में पूरा विश्वास था कि खरीदने वाला है, है ना, मेरा काम होने वाला है। बसो एक अंदर विश्वास से मैं गया, बाहर जो था वो वही था, अंदर में पूरा विश्वास था तो तुरंत वह डील हो जाती थी।
करेक्ट।
और थोड़े ही दिनों में मैं अच्छा सेल्समैन बन गया।
सो
दिस इज इंटरनल। हाँ, सारी बात तो जो समझाना चाहते थे वह यह थी कि इंटरनल है। तो ऐसे ही स्वमान भी पूरा आंतरिक
जी,
है ना। आपकी चमड़ी का रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी है, आपका नाक कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके विचार कैसे है वह महत्वपूर्ण है।
करेक्ट।
और आपके विचार आपके कंट्रोल में है ना, बस उसको बदल दो
जी।
और साइकोथेरापी में वही करना है
जी,
ना, जिसको कहा एक थेरापी की जो बहुत मशहूर हुई है, जिसको कहते हैं CBT की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। बड़ा नाम है लेकिन सरल सी भाषा है कि अपने विचारों को बदलो, जिसको कहेंगे राइट थिंकिंग, कि ना भी विचारों को सही करो तो सब कुछ बदल जाएगा।
ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, टेक्निक्स की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आप यूज करते हैं सारे पेशेंट्स को हील करने के लिए?
ये जैसे मैंने कहा कि CBT भी अच्छी टेक्निक है जिस पर काफी रिसर्च हुई है
जी।
लेकिन CBT में जो मैंने प्रैक्टिकल में दिक्कत देखी
जी,
है ना, काफी लोग इसको यूज करते हैं परंतु सिर्फ उसमें दिक्कतें होती है कि भी CBT में उनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे ये विचार गलत है
जी,
तुम ऐसे विचार को राइट करो, उनको लिखने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन फिर पेशेंट ये कहते हैं कि भी मुझे तो वही आ रहा है।
करेक्ट।
आप मुझे कह रहे हो कि ऐसे नहीं ये करो, लेकिन मुझे तो वही आ रहा है, तो मैं कैसे पॉजिटिव करूं, है ना,
अंदर से वो हो नहीं पा रहा है उनसे।
हाँ, कि भी नहीं, मेरा फोर्स तो वही जा रहा है।
करेक्ट।
तो फिर मैं कैसे उसको करूं, है ना, कि जो अगर ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है उसमें भी ये समझाया जाता है। और सरल सी बात है कि आत्मा की तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। तो मन में विचार निर्माण होता है और बुद्धि उसको दिशा देती है
जी।
तो पहले की जो बात है, पहले के आपके अनुभव है, तो वैसे बुद्धि आपको दिशा देती है। बुद्धि अगर नेगेटिव दिशा दे रही है तो भले आपने समझाया कि मुझे पॉजिटिव में जाना है, मुझे राइट थिंकिंग करना है, लेकिन वो बुद्धि करने नहीं देगी।
ओके, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस वैसे ही रह चुके हैं,
या तो संस्कार वैसे है, जो भी कहो
जी जी जी।
तो अब इसमें क्या करें, है ना। दूसरी भी एक टेक्निक है कि जो भी काफी प्रचलित हुई है, जिसको कहते RBT।
ओके।
हाँ, कि भी रेशनल इमोटिव थेरेपी।
Okay.
ना, तो जो ये है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना। तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसमें कहते हैं कि रेशनलाइज करो, है ना, कि लॉजिक दो। ये भी अच्छा है, यहां भी देखो तो आध्यात्मिक बेस है एक्चुअली।
करेक्ट।
कि बुद्धि व तर्क की भाषा समझती है
जी,
है ना। तो वो तर्क देने की बात है कि भी कोई भी बात है तो उसको सही रूप से तर्क दो, है ना। आप प्रॉपर तर्क देंगे तो वो बुद्धि समझ जाएगी।
करेक्ट।
है ना। फॉर एग्जांपल कि भी आपको लॉस हुआ बिजनेस में और आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, है ना, तो उसको अगर प्रॉपरली तर्क दिया जाए, जैसे मैं एक पेशेंट की आपको बात करूं, ऑलमोस्ट मे बी ये कब का है, 1988-89 की बात।
okay.
कि तब है ना बंबई में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बूम हुआ था।
अच्छा।
हाँ, कि भी सब लोग सोचते थे कि हम बिल्डर बने, है ना, कि भी बिल्डिंग बिल्डर्स की लाइन में बहुत प्रॉफिट है, ऐसा हुआ था, है ना। तब कोई व्यक्ति जिसको बिल्डिंग लाइन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु सोचा कि भी सब बिल्डिंग बना रहे
तो मैं भी क्यों
नहीं बनाऊ, मुझे भी प्रॉफिट होगा। नहीं, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसने जमीन भी ली, सचमुच बनाए है ना, परंतु अनुभव नहीं था, तो काफी चोरी हुई वहां, रेगुलर जा नहीं पाता था है ना, उसने उधार भी पैसे लिए थे।
अच्छा।
है ना, सोचा तो ये था कि इतना इतना मुनाफा हो जाएगा, लेकिन काफी आधे आधे बिल्डिंग बने, फिर पता चला कि तो बहुत बड़ा लॉस है।
अच्छा।
तो बहुत डिप्रेशन में चला गया, ऑलमोस्ट सुसाइडल हो गया। फिर मेरे पास आया तो पूरा मैंने अच्छे से समझा उसका कि वे सारी बात को, और ये जो लॉजिक को लगाया है ना उनका, हमने देखा कि भी उन्होंने जो जो दूसरा बिजनेस था उनका, पहले करीब 82 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था।
अच्छा।
तो जो पहला बिजनेस था उसमें अच्छी खासी कमाई की थी
जी,
है ना, और फिर वो कुछ भी नहीं था उनके पास, उन्होंने फ्लैट ले लिया था, अच्छा सा था, एक शॉप ले लिया था, फिर और जो बचत थी वो ये बिजनेस में लगाई थी, है ना। और अगर तब हम देखते थे उसकी बैलेंस शीट, तो ऐसा होता था कि वो जो बचत थी सब गई
जी,
फ्लैट रह गया, वो शॉप रह गई। तो मैंने उनको कहा देखो कि अभी डिप्रेस होने का आप लॉजिक लगाओ कि यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, आज आपके पास फ्लैट है, शॉप है, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस जो होना चाहिए था वो गया, तो डिप्रेस होने को कारण नहीं है।
करेक्ट।
रहने को घर है, यू हैव अ शॉप, यू कैन अर्न, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो रियली थिंक प्रॉपरली, है ना, लॉजिकली आप सोचो, आप डिप्रेस्ड हुए, आत्महत्या कर ली तो सब कुछ गया। Then he thought over it in detail. भले sometime medicine was needed, then he even stopped medicine. एक बार mentally वो तैयार हो गया कि this is the only thing, and it was my mistake. कि भी मैं business में ध्यान नहीं दे पाया, मेरी shop थी, वहाँ मैं नहीं जा पाया, तो चोरी हो गई, बहुत सारे problem हुए। तो like that, no, REBT can help. कि अगर logic मिल जाए व्यक्ति को proper, बार बार उसको सोचे, उसको पकड़े, then he can come out of depression also.
This is fantastic.
True.
Seriously.
You know, it can happen in any event.
Correct.
No, this is just one example.
Mm-hmm.
But in any situation, agar aap properly usko logically socho, to then it can help.
Okay.
But still many patients say ki we are not getting result. कहीं बार ये
कुछ लोगों के लिए वो शायद नहीं exist कर पा रहे हैं।
नहीं, हम लॉजिक दे भी रहे हैं।
करेक्ट।
उस कहेंगे कि उसका दिमाग एक्सेप्ट भी कर रहा है
जी।
दिमाग से वो कहेगा कि ठीक है
जी,
लेकिन उसका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
ओके।
है ना, फॉर एग्जांपल कि भी रिलेशनशिप में फेलियर हो गया।
करेक्ट।
तो दिमाग से उसको कहो कि भी देखो कि दैट पर्सन वॉज नॉट मेंट फॉर यू, यू नो दैट गाय चीटेड यू, तो क्यों उसके बारे में सोचते हो।
करेक्ट।
उससे तो अच्छा है कि भी ऐसा बंदा या बंदी आपके जीवन में नहीं है।
करेक्ट।
लेकिन वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भाई यहाँ रेशनलाइजेशन ठीक है, तर्क ठीक है, लेकिन इमोशंस ठीक नहीं है, है ना, क्योंकि उसके प्रति तो अटैचमेंट है
जी।
फिर हमने और एक टेक्निक सोची
जी।
कि भाई ये तो यहाँ काम नहीं करता है,
बिल्कुल नहीं,
तो उसको कहा फायर टेक्निक।
Okay.
है ना, F I R E, जैसे ना F is freedom, I is internalize, R is repeat, and E is emotions. इसको है ना थोड़ा बोला कि अभी जोर से करना पड़ेगा।
अच्छा।
है ना, शांति से रेशनलाइज करो तो इफेक्ट नहीं होती है। तो उनके लिए उसी प्रकार के स्टेटमेंट्स बनाए।
अच्छा।
है ना, जो REBT में बनाते हैं या CBT में बनाते हैं, और फिर उनको कहा जोर से रिपीट करो।
ओके।
है ना, चिल्लाओ, जंप लगाओ, और उसको रिपीट करो, जोर से बोलो, इमोशंस उसमें ऐड करो, और 2-3 मिनट तक जोर से जंप लगा के बोलते रहो। है तो, है ना, वो अंदर जाता है।
करेक्ट।
और फिर उनको कहते या तो रिलैक्सिंग चेयर में बैठ जाओ या लेट जाओ। तब सांस भी फूलने लगेगी,
है ना,
हार्ट बीट बढ़ेगी क्योंकि वो जंप लगा रहे थे.
करेक्ट.
एंड फिर नो इन द क्लिनिक वी से, या तो समझो व्यक्ति घर में कर रहा है तो अपने आप करे, या तो घर में कोई फैमिली मेंबर है तो उनको कहते हैं कि अभी आप करो, उनको बोल तुम रिलैक्स हो जाओ एंड नाउ नो ट्राई टू इंटरनलाइज इट. जैसे चीज है ना, अंदर में जा रही है, कॉन्शियसनेस में अंदर जा रही है, वो अनकॉन्शियस में ले जाना है. तो है ना, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं डीप डीप में ले जा रहा हूँ. अगर वो एक बार भी डीप चली गई तो पूरा समाप्त हो जाएगा. हाँ, इट्स अ फैक्ट. ये जो बात है वो एक ही है. जैसे भी दीवार को तोड़ना है, अब 100 बार हथौड़े मार रहे नहीं टूटती, टूटी तो एक बार में टूटती है. उसका मतलब ये नहीं कि वो 99 बेकार थे.
करेक्ट.
है ना, ऐसे भलो रिपीट रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन जब अंदर जाएगा वो एक बार में ही जाएगा.
करेक्ट.
बस वो हमको करना है, और व्यक्ति करे तो इट कैन क्रिएट वंडर. और इसमें है कि भाई नुकसान तो है ही नहीं.
करेक्ट.
डेफिनेटली सिर्फ दिक्कतें होती है कि लोग कई बार कहते कि ये तो मैं जानता हूं, है ना, कि दिस इज नॉट द थिंग. भी जो मुझे तकलीफ दे रहा है, जो समस्या कर रहा है, वो और कुछ है.
ओके.
लेकिन फिर भी करो. चलो ठीक है कि और कुछ क्या है ढूंढो. मिल जाए तब तक ढूंढो. और ये आप बोलते हो कि और कुछ है, लेकिन ये साइड डीप नहीं गया.
करेक्ट.
है ना, उसको कम से कम 8 सप्ताह तो देते ही रहो. आपको लगे भी कि समझ में आ गया है, परंतु ये तो पक्का है कि वो जागृत मन समझा है, सुषुप्त मन नहीं समझा है. सुषुप्त मन को समझने में 8 सप्ताह लगना ही लगना है.
ओके.
और हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो है ना कि भी जो सुषुप्त मन में ना बोलने में हमको चीड़ आती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कहा कि भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हुई है
जी,
हम ये बता रहे हैं कि भी वो बंदा तुम्हारे लायक था ही नहीं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो अनकॉन्शियस तो बोल रहा है कि वही मुझे चाहिए.
करेक्ट. ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है.
आप ऊपर बोलते हैं कि मेरे लायक था ही नहीं
जी.
लेकिन अनकॉन्शियस बोलता है मुझे तो वही चाहिए. तो व्हेन यू से कि वो मेरे लायक नहीं था, तो अनकॉन्शियस को तो गुस्सा आता है कि मुझे तो वही चाहिए.
करेक्ट.
है ना, सो दैट इज समथिंग दैट इरिटेट्स यू.
या
तो उल्टा वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से डीपली उस बात को समझानी है. बिकॉज नाउ इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ.
करेक्ट.
इफ इट इज रियली गॉन, है ना, तो फिर उसका भी पीछा करके फायदा नहीं है. अदर नो आई हैव टू मूव अहेड, इस प्रकार की स्टेट बननी चाहिए.
लेकिन ये किस हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने कहा कि अंदर से मेरा मन तो कह रहा है कि मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सी ऐसी सलाह देना चाहते हैं जिससे वो डायरेक्टली अंदर तक चला जाए, वो कैसे होता है?
नहीं, एक तो वो लॉजिक समझना पड़ेगा.
ओके.
कि मेरा दिल चाहता है बीवी, बट रियली नो ही इज नॉट मेंट फॉर मी.
ओके.
है ना, कि अगर वो मेरे जीवन में आ भी आ जाए तो भी मुझे ज्यादा दुख है ना. आई एम गोइंग टू लिव इन पेन. नहीं ना, उसमें सचमुच अगर सोचा जाए तो मैं सुख में जीने वाली या जीने वाला नहीं हूं. तो नो देन व्हाट इज इट्स मैटर. ये जो है ना, वो अंदर में जो चाहना है वो गलत है. वो कन्विक्शन एक प्रकार से प्रॉपर से होना चाहिए.
ओके. तो वो अंदर में अगर हम पूरी स्ट्रॉन्गली बोले तभी शायद वो अंदर तक जाए.
स्ट्रॉन्गली बोले, स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी दिया जाए अच्छे से. है ना, different type of logic even.
Correct.
Even one simple logic can work, है ना? वो सारा अगर होगा तब properly वह काम कर सकता है.
Okay. जी. डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कमाल की टेक्निक आपने बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
थैंक यू।
ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? CBT जो एक टेक्निक है, जिसमें हमने देखा कि राइट थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हम ऑटोमेटिकली डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने फायर टेक्निक को भी जाना और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेना है और उसे किस तरह से अपने अंदर में भरपूर बनने के लिए यूज़ करना है। तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ की जो ये सारी डिप्रेशन है, ये ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।